स्वागत। आज हम गोता लगा रहे हैं अध्याय 14 में। टॉपिक है पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग, और खास तौर पर हम समझेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स को।
हाँ बिल्कुल,
हमारे पास ये अध्याय है स्रोत के तौर पर, और हमारा मकसद है इसमें से सबसे जरूरी बातें निकालना, जैसे पत्र क्या है, क्यों लिखे जाते हैं, और ये जो दो मुख्य प्रकार है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल, इनमें आखिर फर्क क्या है।
सही।
हम इनकी बनावट मतलब फॉर्मेट और लिखने का जो लहजा होता है ना, टोन, उस पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी की तह तक जाना।
बिल्कुल। और देखिए, पत्र लेखन ना आज भी मतलब लिखित कम्युनिकेशन का एक बहुत अहम जरिया है। चाहे वो दफ्तर की कोई बात हो या दोस्तों से कुछ कहना हो, ये हमें अपने विचार, अनुरोध या कोई जानकारी दूसरों तक पहुंचाने का एक व्यवस्थित तरीका देता है।
सही बात है।
तो आज की बातचीत का लक्ष्य यही है कि इस अध्याय में जो बताया गया है फॉर्मल और इनफॉर्मल पत्रों के बारे में, उनकी बारीकियों को एकदम साफ कर दें।
ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे पहले बहुत ही बुनियादी सवाल, ये पत्र लेखन आखिर है क्या चीज? जैसा कि ये अध्याय बताता है, ये बस लिखित शब्दों के जरिए अपने विचारों, अनुरोधों, भावनाओं या सूचनाओं को किसी और तक भेजना है। सिंपल।
हाँ, सिंपल तो है, लेकिन इस सिंप्लिसिटी में भी कह सकते हैं गहराई है। जानना ये जरूरी है कि लिखने के मुख्य तौर पर दो अलग रास्ते हैं, जिनके मकसद और पढ़ने वाले दोनों अलग होते हैं।
अच्छा।
और यही है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, जिन पर हम आज फोकस कर रहे हैं।
सही कहा। ये दो बड़ी श्रेणियां हैं अगर अध्याय के हिसाब से देखें तो। पहला फॉर्मल लेटर, ये होते हैं आधिकारिक कामों के लिए, जैसे ऑफिस, स्कूल या किसी सरकारी विभाग से जुड़े मसलों पर।
हाँ बिल्कुल।
इनका टोन बेहद विनम्र, पोलाइट और सम्मानजनक, रिस्पेक्टफुल रखना पड़ता है। और इनका फॉर्मेट भी काफी संरचित, स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब एक तय ढांचा फॉलो करना होता है।
एक प्रॉपर फॉर्मेट।
हाँ।
और दूसरी तरफ है इनफॉर्मल लेटर, ये वो पत्र हैं जो हम अपने परिवार वालों, दोस्तों या रिश्तेदारों को लिखते हैं।
हाँ, अपने लोगों को।
यहाँ टोन एकदम दोस्ताना, फ्रेंडली और भावनात्मक, इमोशनल हो सकता है। ये ज्यादा व्यक्तिगत, पर्सनल और अनौपचारिक, कैजुअल होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम अपनों से बात करते हैं।
यहाँ एक मतलब दिलचस्प नुक्ता ये है कि ये फर्क सिर्फ इस बात पर नहीं रुकता कि पत्र किसे लिखा जा रहा है।
अच्छा।
हाँ, ये सीधे तौर पर तय करता है कि हम कैसे लिखेंगे, कौन से शब्द चुनेंगे, वाक्य कैसे बनाएंगे और पूरे पत्र की शक्ल सूरत कैसी होगी। ये सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि मामला फॉर्मल है या इनफॉर्मल।
ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि सही प्रभाव डालने का तरीका भी है एक तरह से।
चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और फॉर्मेट को थोड़ा और खोलते हैं। अध्याय बताता है कि कुछ हिस्से तो दोनों तरह के पत्रों में होते हैं, पर उनका अंदाज और जगह अलग होती है। तुलना करके देखें तो शायद ज्यादा आसानी से समझ आएगा।
हाँ, ये तुलना जरूरी है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ सजावट नहीं है, हर हिस्से का एक मतलब है, एक वजह है।
बिल्कुल। जैसे शुरुआत की जानकारी ले लीजिए, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता और डेट, तारीख। फॉर्मल लेटर में पता ऊपर बाएं तरफ, टॉप लेफ्ट आता है, एकदम साफ और पहले।
हाँ बिल्कुल, स्पष्टता के लिए।
शायद इसलिए ताकि पाने वाले को तुरंत पता चल जाए कि पत्र कहाँ से आया है।
हाँ संभवतः यही कारण है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में स्पष्टता और स्रोत की पहचान, मतलब किसने भेजा है, ये जरूरी होती है, जबकि इनफॉर्मल लेटर में यही पता ऊपर दाईं तरफ, टॉप राइट लिखा जाता है।
अच्छा, दाईं तरफ।
हाँ, यहाँ थोड़ी ज्यादा लचीलापन है क्योंकि रिश्ता व्यक्तिगत है। डेट वो दोनों में पते के नीचे ही आती है, ये तो रिकॉर्ड के लिए जरूरी है ही।
फिर आते हैं पत्र को फ्रेम करने वाले हिस्से, सैल्यूटेशन, संबोधन और क्लोजिंग, समापन। फॉर्मल में हम डियर सर, मैडम या फिर पद का नाम, जैसे डियर प्रिंसिपल, इस्तेमाल करते हैं एक दूरी और सम्मान दिखाते हुए।
हाँ, एक औपचारिक दूरी।
और इनफॉर्मल में डियर रिया, माय डियरेस्ट पापा, हाय अमित, यहाँ अपनापन।
हाँ बिल्कुल, नजदीकी दिखती है
और नजदीकी झलकती है,
और यही टोन सेट कर देता है ना। सैल्यूटेशन से ही पढ़ने वाले को अंदाजा हो जाता है कि आगे किस तरह की बात होने वाली है।
सही।
फॉर्मल में क्लोजिंग भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। फॉर्मल में योर सिंसियरली या योर्स फेथफुली जैसे वाक्यांश एक पेशेवर दूरी बनाए रखते हैं। इनफॉर्मल में विथ लव, योर्स लविंगली, बेस्ट विशेस जैसे शब्द रिश्ते की गर्मजोशी दिखाते हैं, और आखिरी में नेम एंड सिग्नेचर। फॉर्मल में पूरा नाम, शायद पद भी, और हस्ताक्षर जरूरी होते हैं पहचान और प्रामाणिकता के लिए।
हाँ बिल्कुल।
इनफॉर्मल में बस पहला नाम काफी होता है।
फॉर्मल लेटर में ये बिल्कुल नपातुला होता है। अध्याय के मुताबिक इसमें साफ पैराग्राफ होते हैं, परिचय इंट्रोडक्शन, फिर मुख्य मुद्दा मेन पॉइंट, और आखिर में नतीजा या अनुरोध कंक्लूजन। भाषा सीधी सटीक और ऑब्जेक्टिव होती है, कोई इधर उधर की बात नहीं,
क्योंकि उद्देश्य साफ होता है। जानकारी देना, अनुरोध करना या शिकायत करना, यहाँ भावनाओं या लंबी चौड़ी भूमिका की गुंजाइश कम होती है या होती ही नहीं है। दूसरी तरफ इनफॉर्मल लेटर का बॉडी, वो तो एक खुली बातचीत जैसा है।
हाँ, जैसे गपशप कर रहे हो।
बिल्कुल, यहाँ आप हालचाल पूछ सकते हैं, अपने अनुभव बांट सकते हैं, भावनाएं जाहिर कर सकते हैं, किस्से सुना सकते हैं। भाषा ज्यादा स्वाभाविक और सब्जेक्टिव होती है।
तो कुल मिलाकर ये जो फॉर्मेट है, ये सिर्फ लिखने का तरीका नहीं है, बल्कि पत्र के मकसद और रिश्ते को दिखाने का जरिया भी है।
बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो फॉर्मल लेटर का ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट असल में क्लैरिटी और प्रोफेशनलिज्म पक्का करता है।
हाँ, ये जरूरी है।
आधिकारिक बातचीत में ये बेहद जरूरी है, ताकि आपकी बात गंभीरता से ली जाए और उस पर सही कार्रवाई हो सके। वहीं इनफॉर्मल लेटर का लचीलापन व्यक्तिगत रिश्तों की सहजता और अपनेपन को दर्शाता है।
हर हिस्से का अपना एक किरदार है, अपना महत्व है। अब कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं जो अध्याय में दिए गए हैं। फॉर्मल लेटर्स के कुछ आम इस्तेमाल बताए गए हैं, जैसे शिकायतें, कंप्लेंट्स। मान लीजिए आपके इलाके में सड़क टूटी है या पानी की सप्लाई में दिक्कत है, तो आप संबंधित विभाग को फॉर्मल लेटर लिखेंगे।
हाँ, या फिर आवेदन, एप्लीकेशंस, स्कूल में छुट्टी चाहिए या किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, या फिर पूछताछ, इंक्वायरीज, किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप संस्थान को फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। ये सब फॉर्मल कैटेगरी में आते हैं।
अध्याय में एक बढ़िया उदाहरण भी है, अपने घर के पास जमा कूड़े के ढेर की शिकायत करते हुए नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखा गया पत्र।
देखिए, इसमें सब कुछ कितना व्यवस्थित है।
हाँ, ये अच्छा उदाहरण है।
सबसे ऊपर भेजने वाले का पता, A56 ग्रीन पार्क कॉलोनी, न्यू दिल्ली, फिर तारीख 15 जुलाई 2025,
फिर पाने वाले का पद और पता, द कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली।
बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप।
फिर एक सीधा सा सब्जेक्ट, कंप्लेंट अबाउट ओवरफ्लोइंग गार्बेज। सब्जेक्ट देखते ही समझ आ गया कि पत्र किस बारे में है, कोई लाग लपेट नहीं।
हाँ, बिल्कुल क्लियर।
फिर विनम्र सैल्यूटेशन, डियर सर मैडम। बॉडी में सीधा मुद्दे की बात, कूड़ा फैला है, बदबू आ रही है, बीमारियां फैलने का डर है, मक्खियां भिन भिन आ रही हैं, आवारा जानवर आ रहे हैं,
समस्या का पूरा ब्यौरा।
हाँ, और आखिर में तुरंत कार्रवाई का अनुरोध, अंत में औपचारिक क्लोजिंग, योर सिंसियरली, और फिर पूरा नाम, तन्वी मल्होत्रा।
यह उदाहरण बखूबी दिखाता है कि फॉर्मल लेटर के सारे पुर्जे, विनम्र टोन, साफ भाषा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, कैसे मिलकर एक आधिकारिक बात को असरदार तरीके से रखते हैं।
बिल्कुल,
सब्जेक्ट लाइन ने ध्यान खींचा, बॉडी ने समस्या बताई और समाधान मांगा, और बाकी फॉर्मेट ने इसे एक गंभीर अनुरोध का रूप दिया। ऐसी शिकायत को नजरअंदाज करना मुश्किल होता है।
ठीक है, ये तो हुई फॉर्मल बात। अब आते हैं जरा हल्के फुल्के माहौल में इनफॉर्मल लेटर्स पर। इनके आम मकसद क्या होते हैं?
अध्याय बताता है अपने अनुभव बांटना, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। सोचिए, आप कहीं घूमने गए तो वापस आकर दोस्त को चिट्ठी लिखकर सब बताएंगे।
हाँ, या फिर किसी को न्योता देना, इन्विटेशंस, शादी का, जन्मदिन का, या बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेशंस किसी की सफलता पर,
या बस यूं ही किसी का हालचाल पूछना, आस्किंग हाउ समवन इज, खैरियत जानना, ये सब इनफॉर्मल में आता है।
इसका भी एक प्यारा सा उदाहरण दिया है अध्याय में। तन्वी अपनी चचेरी बहन रिया को मनाली की छुट्टियों के बारे में बता रही है। यहाँ फॉर्मेट देखिए, ली 15 जुलाई 2025, सैल्यूटेशन, डियर रिया। कितना अपनापन है।
हाँ, बिल्कुल अलग टोन है शुरू से ही।
बॉडी की भाषा तो बिल्कुल अलग है, गर्मजोशी से भरी, व्यक्तिगत। लिखा है, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट माई अमेजिंग ट्रिप टू मनाली। द माउंटेन्स वर कवर्ड इन स्नो एंड वी इवन बिल्ट अ स्नोमैन। तन्वी अपनी खुशी, अपना उत्साह सब बांट रही है। फॉर्मल वाले पत्र की तरह कोई नपातोला अंदाज नहीं है,
कोई औपचारिकता नहीं।
हाँ, और क्लोजिंग विद लव, आखिर में सिर्फ पहला नाम तन्वी।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि भाषा कितनी बदल गई। फॉर्मल शिकायत पत्र की भाषा से जमीन आसमान का फर्क है।
बिल्कुल,
व्यक्तिगत शब्दों का इस्तेमाल, डूइंग ग्रेट, अमेजिंग ट्रिप, भावनाओं का खुलकर इजहार और बातचीत वाला लहजा, ये सब उस शिकायत पत्र में नहीं मिल सकता था। ये पत्र साफ तौर पर तन्वी और रिया के बीच के करीबी अनौपचारिक रिश्ते को दिखाता है। यहाँ नियमों से ज्यादा भावनाएं अहम हैं।
और टोन और लैंग्वेज का ये फर्क अध्याय में एक टेबल के जरिए भी समझाया गया है. साफ तौर पर बताया है टोन, लहजा. फॉर्मल में पोलाइट और प्रोफेशनल, इनफॉर्मल में वार्म और इमोशनल. वर्ड्स शब्द, फॉर्मल में औपचारिक शब्द और वाक्य रचना, फॉर्मल एक्सप्रेशंस. इनफॉर्मल में व्यक्तिगत शब्द, पर्सनल वर्ड्स, यहाँ तक कि थोड़ी बोलचाल की भाषा भी चल सकती है.
हाँ, थोड़ी छूट होती है.
पंक्चुएशन, विराम चिन्ह. फॉर्मल में एकदम सटीक, प्रिसाइज, व्याकरण के नियमों के मुताबिक. इनफॉर्मल में ज्यादा स्वाभाविक और सहज, नेचुरल एंड फ्लोइंग, जैसे हम बोलते हुए रुकते हैं.
और यहाँ ये सवाल उठता है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है, मतलब टोन और लैंग्वेज का इतना ध्यान क्यों दें. देखिए, सही टोन और लैंग्वेज चुनना ये पक्का करता है कि आपका संदेश पढ़ने वाले तक ठीक उसी तरह पहुंचे जैसा आप चाहते हैं. और उसका वही असर हो जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं. सोचिए, अगर आप नगर निगम कमिश्नर को शिकायत पत्र लिखते हुए दोस्तों वाली भाषा इस्तेमाल करें. हे डूड, गार्बेज प्रॉब्लम है, तो क्या आपकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा? शायद नहीं.
हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, शायद डांट और पड़ जाए.
हाँ, और इसी तरह अगर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को जन्मदिन की बधाई देते हुए बेहद फॉर्मल भाषा में लिखें, एस्टीम्ड फ्रेंड, प्लीज एक्सेप्ट फेलिसिटेशंस ऑन द एनिवर्सरी ऑफ योर बर्थ,
ओहो,
तो उसे कितना अजीब लगेगा. लगेगा कि रिश्ता ही बदल गया है. तो गलत टोन आसानी से गलतफहमी पैदा कर सकता है या रिश्ते पर असर डाल सकता है, इसलिए सही चुनाव जरूरी है.
तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इस अध्याय की सारी बातों का निचोड़ निकालें तो मुख्य बातें ये हैं. पहला, फॉर्मल लेटर अधिकारियों, संस्थानों वगैरह के लिए. टोन औपचारिक, फॉर्मेट तयशुदा, मकसद आधिकारिक काम.
ठीक.
दूसरा, इनफॉर्मल लेटर परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए. टोन दोस्ताना, व्यक्तिगत. फॉर्मेट में लचीलापन, मकसद रिश्ते निभाना, भावनाएं बांटना. तीसरा, फॉर्मेट के हिस्से, एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग, नेम. ये दोनों में होते हैं, पर उनकी जगह, अंदाज और भाषा अलग होती है.
सही.
और चौथा, टोन का महत्व. पत्र का लहजा उसके उद्देश्य और पाने वाले पर निर्भर करता है, और सही टोन चुनना प्रभावी संचार के लिए बेहद जरूरी है.
एकदम सही. और इस अध्याय का सार यही है कि स्थिति को समझकर सही तरह का पत्र चुनना और फिर उसके अनुरूप फॉर्मेट, लैंग्वेज और टोन का इस्तेमाल करना ही असरदार लिखित संचार की कुंजी है. ये जानना कि कब फॉर्मल होना है और कब इनफॉर्मल एक जरूरी स्किल है, कह सकते हैं.
तो इस अध्याय की इस गहराई भरी चर्चा से हमने यही सीखा कि पत्र लेखन, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, असल में अपने पढ़ने वाले, ऑडियंस और अपने लिखने के मकसद, पर्पस को ध्यान में रखकर साफ और असरदार तरीके से अपनी बात कहने का हुनर है. दोनों के अलग स्ट्रक्चर, फॉर्मेट और टोन को समझना हमें अपनी बात सही ढंग से पहुंचाने में मदद करता है.
और यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है, जो इसी अध्याय की सीख से निकलता है. आज के जमाने में जब हमारे पास ईमेल, व्हाट्सएप, संदेश जैसे संचार के कई और तेज माध्यम हैं, तब भी क्या ये फॉर्मल और इनफॉर्मल वाले सिद्धांत उतने ही मायने रखते हैं?
अच्छा सवाल है.
क्या इन नए माध्यमों में ये शैलियां आपस में घुलमिल जाती हैं या बदल जाती हैं? ऑडियंस और पर्पस के वही पुराने नियम इन नए मंचों पर कैसे लागू होते हैं? ये सोचना दिलचस्प है कि संचार के बुनियादी सिद्धांत अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ कैसे अपना रूप बदलते हैं या शायद नहीं बदलते.
ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है कि ये सिद्धांत आज के दौर में कैसे ढल रहे हैं. क्या ईमेल में भी वही फॉर्मल इनफॉर्मल बंटवारा होता है या व्हाट्सएप पर?
इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है. उम्मीद है पत्र लेखन की ये समझ आपके काम आएगी.